हरि ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवर वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदि दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 ओम 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 आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र पर विचार कर रहे हैं। विचार के लिए छठा स्तोत्र है। घटो वामृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल पटो वा तंतुर्वा परिहरति किं घोर समनम् वृथा कंठाक्षोभम् वहसि तरसा तरुक वचसा पदाम्भोजं शम्भोर् भज परम सौख्यं व्रज सुधी मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचस्तोत्र फणितौ करौ चाभ्यर्चयां श्रुतिरपि कथा कर्णन विधौ तव ध्याने बुद्धिर् नयन युगलं मूर्ति विभवे परग्रंथान केर्वा परम शिव जाने परमतः यथा बुद्धि सुप्तौ रजतमिति चास्मा का चास्मनि मणिर् जले पेष्ठे क्षीरम् भवति मृगतृष्णा सुजलि सलिलम् तथा देव भ्रांत्वा भजति भवदन्यं जड़जनो महादेवे संपां मनसि च नमत्वा पशुपते गभीरे कासारे विसति विजने घोर विपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः समर्पे किं चेतस् सरसिजमुमानात् भवते सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो नरत्वं देवत्वं नगवन मृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननं सदा
पादाब्ज स्मरण परमानंद लहरी विहाराशक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा घटो वा मृत्पिण्डो प्यणुरपि च धूमोऽग्निरचल पटो वा तन्तुर्वा परिहरति किं घोरसमनम् वृथाकण्ठक्षोभम् वहसि तरसा तर्कवचसा पदाम्भोजं शम्भोर्भज परमसौख्यं व्रजसुधि घटो वा मृत्पिण्डो।
भगवान शंकराचार्य जी शिव भक्ति को प्राथमिकता देते हैं, प्रधानता देते हैं, महत्व देते हैं। भक्ति भाव प्रदान है, तर्क प्रदान नहीं, बुद्धि प्रदान नहीं, भक्ति हार्दिक है, बौद्धिक नहीं है। अनेक दार्शनिक जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, हालांकि उन दार्शनिकों में शंकराचार्य जी भी खुद भी दार्शनिक हैं और महान दार्शनिक हैं, छोटे मोटे दार्शनिक नहीं है, बहुत बड़े चिंतक रहे हैं। उन्होंने जो चिंतन की है, विश्व के बड़े बड़े मनीषी आज अचंभित होते हैं, आश्चर्य मानते हैं कि छोटे से उम्र में क्या चिंतन किया है उन्होंने, जगत के बारे में, जीव के बारे में, संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत चिंतन किया। ऐसे चिंतन करने वाले बहुत हुए हैं, बड़े आचार्य हुए हैं और आज भी है कि बहुत अपना जीवन पूरे शास्त्र चिंतन में ही व्यतीत करते हैं, अध्ययन और अध्यापन में ही सारा समय लगाते हैं। ऐसे विद्वान आज भी विद्यमान है, लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं ये लोग इस बात को नहीं जानते और केवल तार्किक और बौद्धिक बनते हैं और उसी में रह जाते हैं। परमात्मा की जो भक्ति है उस रहस्य को ये लोग नहीं जानते। परिणाम क्या होता है कि उस शब्द जाल में परे रहते हैं वो लोग। और खुद शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखी है, जो शब्द जाल में पड़ते हैं वे कभी भी फिर उस जंजाल से निकल नहीं सकते। ये शाब्दिक जंजाल, शब्द जाल इतना बड़ा जाल है कि महाअरण्य है, जंगल है, घनघोर। विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, शंकराचार्य जी की रचना है विवेक चूड़ामणि। वेदांत विचार करने के लिए बहुत उपयुक्त है विवेक चूड़ामणि, लेकिन कह देते हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये पढ़ लो और ये भी कह रहे हैं कि इसके चक्कर में नहीं पढ़ना, इससे निकलने के लिए पढ़ना हो तो पढ़ लो, इसमें फंसने के लिए नहीं पढ़ना। देखो, संसार परमात्मा की रचना है और हम भी परमात्मा की ही रचना है। अब रही बात, संसार किसके लिए बनाया परमात्मा ने, अपने लिए बनाया कि हमारे लिए बनाया है? परमात्मा ने इस जगत को बनाया तो अपने लिए बनाया कि हम लोगों के लिए बनाया है? इसका मतलब उसी ने अपने लिए बनाया है, हम लोगों के लिए नहीं बनाया। तो फिर हम इसका उपयोग करते हैं तो हम जबरदस्ती करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन वंजिता माग्रध कस्य सिद्धनम्। ठीक है, उसने बनाया है तो उसी का ही है, मानते हुए इसका उपयोग करो, कहा तो यही जा रहा है। परमात्मा ने यह जगत बनाया है हम लोगों के उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं। उपभोग में और उपयोग में बड़ा अंतर है। वो उपभोग आसक्ति पूर्वक होता है, उपयोग में आसक्ति नहीं होती है। मैं आपको हमेशा इस दृष्टांत से समझाया करता हूं उपभोग और उपयोग में कितना अंतर है। मान लो कि पहले के जमाने में, आज तो आप लोग सब संपन्न हो गए, संभ्रांत हो गए, तो पहले के जमाने में गांव में रहने वाले सभी के पास सभी साधन नहीं होते थे। किसी के पास कुछ होता था, दूसरे के पास कुछ और होता था, तीसरे के पास कुछ और होता था। और जब कभी कोई फंक्शन का कार्यक्रम होता था तो कुछ और उससे मांग के लाए, कुछ उससे मांग के लाए, कुछ उससे मांग के लाए, कुछ उससे मांग के लाते। अरे बाबा, यहां तक पहले के जमाने में हमने सुना है कि गांव में कोई संभ्रांत और संपन्न व्यक्ति ने कुछ ज्वेलरी बना ली, आभूषण बना के रख ली, तब गांव में किसी की लड़की की शादी करना हुआ तो वो तो ज्वेलरी खरीद नहीं सकता था अपना, लेकिन शादी के दिन भी कम से कम वधु को, उस दुल्हन को सजा तो ले। तो पहले के जमाने में ये चला करता था, तो लोग क्या करते थे, उसके यहां जाते थे, कुछ डिपॉजिट रख के वो सब गहना आभूषण ले आते थे, मांग के लाते थे। और शादी भर के लिए वह उसको श्रृंगार करते थे, सजाते थे, बहुत सुंदर दिखती थी। और उसके बाद शादी समाप्त हो गया, सारे आभूषण उसको वापस किया, डिपॉजिट लेके आ गए, या उसको धन्यवाद दे दिया। इसे बढ़कर और क्या डिपॉजिट हो सकता है, बोलो। जिसके साधन को तुम उपयोग करो उसके बाद यदि उसको थैंक्स कर दो तो उससे बढ़कर दूसरा डिपॉजिट हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम इतने निकम्मे हैं कि उसके वस्तु का खूब प्रयोग कर लेते हैं और न लौटाते हैं न थैंक्स करते हैं। शंकराचार्य जी वही कहने जा रहे हैं, कम से कम या तो लौटाओ, है सही रूप में तो लौटाना ही है, क्योंकि उसकी वस्तु है। यह दृष्टांत किसका है, उपयोग का है। गांव में किसी एक के पास वस्तु है, उस वस्तु का दूसरे को आवश्यकता पड़ी, उपयोग के लिए उसने मांगा और उसने उपयोग कर ली और उसको लौटा दिया। उपयोग करने वाला व्यक्ति उपयोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं करता, करता है? है? उपयोग करने वाला व्यक्ति उपयुक्त पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं करता है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि आभूषण मेरी है, कहेगा वो किसी नगर सेठ से उसने आभूषण अपनी कन्या के विवाह के लिए, कन्या को सजाने के लिए उसने मांग के लाए, चार दिन पांच दिन के लिए जो हो, और वो उपयोग कर रहा है, लेकिन वो कन्या का बाप या कन्या या कोई और उस आभूषण को ये मेरी है ये कहेगा वो? कभी भी स्वप्न में भी नहीं कहेगा। जागृत में तो कहने की बात छोड़ दो, है उसी की। हा, लेकिन उपयोग पूरा कर रहा है, और जहां उपयोजन पूरा हुआ कि उसको वापस कर दिया। उसके बाद उसका क्या होगा, वो क्या कर रहा है जिसका वो वस्तु है, है? कहां रखा है, क्या कर रहा है, बेचा कि नहीं बेचा, उसी रूप में रखा है कि उसको तोड़ ताड़ दिया कि उसके बारे में कुछ सोचता है उपयोगकर्ता व्यक्ति है? नहीं सोचता। हम क्यों सोचते हैं फिर? हम क्यों सोचते हैं? इसका मतलब हम अब जबकि उपभोग करने का अधिकार किसको है? परमात्मा को तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए परमात्मा उपभोग नहीं करेगा। और सामान्यतः उपभोग करने का अधिकार किसको है? जिसका जो वस्तु है उसी को है। और शास्त्र ने कहा, गुरुओं ने कहा, उपनिषदों ने कहा, सारा संसार और सांसारिक पदार्थ परमात्मा की है, उसका है। तब फिर हमें क्या करना चाहिए? उसका है, काम चलाने के लिए उपयोग करो। उपयुक्त पदार्थ में आसक्ति मत करो, क्योंकि तुम हमेशा ख्याल रखो वो उसका है, उसका मालिक वो है। ये प्रयोजन पूरा होने के बाद मुझे इसको लौटाना है, ये होगा तो क्या होगी? ये दृष्टि होगी तो तेन त्यक्ते न भुंजी था, यही है। लोग कहते हैं महाराज ये त्यक्ते ही न भुंजी था, त्याग करो फिर भोग करो, ये क्या विरोधाभास शब्द है? त्याग करो तो फिर भोग क्या होगा? भोग करो तो फिर त्याग क्या होगा? फिर उपनिषद ईशावास्य उपनिषद में ये शब्द क्यों प्रयोग कर दिया? तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्याग करो और भोग करो, विरोधाभास। भोग होगा तो त्याग नहीं होगा, त्याग होगा तो भोग नहीं होगा। इसका अर्थ यही है कि त्याग भावना से उपयोग करो, वहां भोग का अर्थ उपयोग है। तब मैं हमेशा दृष्टांत देकर समझाया करता हूं, किसी को मधुमेह हो गया, ये तो शरीर में मधुमेह तो अब तो आम चीज है, सभी को प्राय शरीर है तो मधुमेह है, है शुगर तो है ही है। तो अब विचार करो, इस समय आप रोज आमरस खा रहे होंगे, है आप उस आम का रस खा रहे होंगे, अभी तो और आम आ रहे हैं, खा रहे होंगे। जिसको मधुमेह सीमा से ऊपर है, बाउंड्री लाइन की तो बात छोड़ दो, उस सीमा से अनियंत्रित है जिसका, वो क्या कभी आमरस खाएगा? तो क्या पहले मधुमेह नहीं था उस समय उसी तरह खाएगा कि डरता हुआ खाएगा? हा? खाएगा, घर में बना है, सभी लोग खा रहे हैं, सभी लोग आग्रह कर रहे हैं, खाएगा। लेकिन क्या वो आसक्ति पूर्वक खाएगा कि डरता हुआ खाएगा, बोलो? और हम संसार को आसक्ति पूर्वक भोग रहे हैं कि डरते हुए भोग रहे हैं, हैं? बोलो, हम संसार को किस तरह भोगते? मधुमेह वाला रोगी है दूध पाक खाते समय डरता हुआ खाएगा कि आसक्ति से खाएगा, बोलो? डरता हुआ खाएगा। तो ये समझ लो कि वेदांत के दृष्टि से जितने भी मुमुक्षु हैं वो सब मधुमेह हैं, समझे कि नहीं? वेदांत के दृष्टि से जितने भी मुमुक्षु हैं वो सब क्या है? मधुमेह रोगी हैं। अब उनको संसार भोगना है तो कैसे भोगेगा? मुमुक्षु संसार को जब भोगेगा तो डरता हुआ भोगेगा, उस डरते हुए भोगने की दृष्टि को ही तेन त्यक्ते न भुंजी था। ये कहीं इसमें मैं फंस न जाऊं, कहीं ज्यादा प्रयोग न कर लूं, कहीं ऐसा न हो कि कल जाकर मेरे लिए समस्या बन जाए, ये संसार की आसक्ति कहीं मेरे लिए समस्या न बन जाए, इस बात को हमेशा मुमुक्षु ध्यान रखता है। इसीलिए तेन त्यक्ते न भुंजी था हो गया। और भुभुक्षु क्या करेगा, बोलो? ये तो मौका है, दिन दिन रोज कहां मिलेगा, एक महीने का तो ये तो सीजन का है, अब बारिश हो गया, अब तो जाने वाला है महाराज, खा लो, दूसरे महीने के बाद नहीं मिलेगा तो वो क्या कहेगा पता है? भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता काहो ऋणम कृता घृतम पिवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, मिल गया भोगो, बड़ा मुश्किल से मिला है, कितने जन्मों के बाद मिला है बोलो? आमरस खाने का अवसर कितने जन्मों के बाद मिला है? वर्षों की बात नहीं कह रहे, कितनी जन्मों के बाद मिला है बोलो? सामान्य भी 84 लाख योनि के बाद मिला है ना, है बोलो, है कि नहीं? सामान्य भी आमरस बनाकर आमरस खाने का अवसर तो किसी पशु ने आमरस बनाकर खाता हुआ देखा? तुमने बनाकर दे दी तो खा लिया, वो बनाकर तो खाता हुआ देखा नहीं है। वो भी बड़ा लकी है कि जो कि तुम जैसे व्यक्ति मिल गए उसको आमरस बनाकर खिलाने वाले, वो बड़ा लकी है, नहीं तो वो क्या बना के खा पाएगा? और तुम्हें अब अपने आप बना के खा पाते हो कि नहीं, तो ये कब मिला है ये अवसर, ये चांस बोलो? लोग तो यही कहते हैं ना, 84 लाख योनि उसके बाद मनुष्य योनि, तब जाकर वो हमको ट्रिक सीखने को मिला आमरस कैसे बनाया जाए, फिर बनाकर खाने का अवसर प्राप्त तो हुआ है, तो क्यों छोड़े? इसको क्या कहते हैं? आसक्ति। तो परमात्मा ने जगत बनाया किसके लिए? हम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, उसके लिए नहीं, उसको तो जगत की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए जगत की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम कर्म फलों को भोगना है, और भोग्य पदार्थ नहीं होगा तो हम कर्म फलों को भोगकर कब समाप्त करेंगे? यद भोगायतनम तदेव शरीरम चष्टाश्रय व भोग्य साधन, भोगाश्रय, भोगाश्रय शरीर और भोग्य साधन विषय, ये दोनों बनाया परमात्मा ने। और ये दोनों जब हमको पहली बार मिला, यदि उस समय गलती न करते और ईशावास्य उपनिषद पढ़ लिए होते, समझे नहीं? पहली बार जब मिला परमात्मा की कृपा से, उस समय यदि गलती न किए होते और ईशावास्य पढ़ लिए होते और ईशावास्य के कहे अनुसार तेन त्यक्तेन भुंजी था किया होता, डरते हुए आमरस पिया होता, तो ये पुनर्जन्म का सुगर न बढ़ता। ये पुनर्जन्म क्यों हुआ बोलो? पहली बार जो गलती हुई, किसी ने कहा है ना, मिट्टी के खिलौने फना होने से डरते हैं, देख लो, जहर पीते हैं पर दवा से डरते हैं, जीने वाले जहां से डरते हैं, जीने वाले संसार में जीना चाहते हैं, जी भी रहे हैं, जीने वाले जहां से डरते हैं और जिस संसार में वो जी रहे हैं उसी से डर भी रहे हैं। और यदि तुमको डर लग रही हो तो तुम दवा खा लो, तो बोले दवा से डरते हैं। जीने वाले जहां से डरते हैं, जहर पीते हैं पर दवा से डरते हैं, बड़ा उल्टा है। जहर पीकर कहीं जीने की आशा रख सकते हैं? कोई पी रहा है जहर और कहता है मैं जीना चाहता हूं, और पिया जा रहा है जहर, और किसी ने कहा कि यदि तुमको जीने की इच्छा है तो दवा पी लो, बोले दवा से डरते हैं। फिर तुम किससे डरते हो? किसका मोबाइल बज रहा है? हाँ, तो किसी ने पूछा तुम किससे डरते हो, तो शायर लिखता है हमसे अगर पूछे कि कोई हमसे यदि पूछे कि तुम किससे डरते हो, तो शायर कहता है कि हम ना जहां से डरते हैं, ना जहर से डरते हैं, ना दवा से डरते हैं, हमसे अगर पूछे कि कोई, तो जनाब हम तो अपनी ही कथा से डरते हैं, न दवा से डरते हैं, न जहर से डरते हैं। कथा क्या है भाई? हाँ, क्यों डरते हो तुम अपनी कथा से भाई? तो आगे कहता है, न जाने कब की थी गलती हमसे, न जाने कब की थी गलती हमने। देखो, जीव अनादि है, जगत भी अनादि है, जीव भी अनादि है, जगत भी अनादि है। कब, कैसे, इसका कोई उत्तर नहीं है, अनादि है। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले परमात्मा ने जब जीवात्मा को शरीर आदि के निर्माण की और उसमें प्रतिबिंबित होकर जीव भाव खड़ा हुआ, ईश्वर सृष्टि के क्रम में जब शरीर आदि स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर का निर्माण किया और उसमें प्रतिबिंबित होकर जीव भाव खड़ा हुआ, उस जीव ने सबसे पहले गलती क्या कर ली? मैं बिंबाधीन हूं, मैं बिंबाधीन हूं, बिंबाश्रित हूं, मैं उपाध्याधीन नहीं हूं, उपाध्याश्रित नहीं हूं। ये निश्चय कर लिया होता तो फिर उसको ये खता, ये परिस्थिति भोगना न पड़ता। आप लोग ध्यान देकर सुनना, ये थोड़ा तत्व चिंतन का भी प्रसंग आ रहा है। लेकिन उसने गलती क्या की? प्रतिबिंब का अस्तित्व बिंब पर आश्रित है, लेकिन वो प्रतिबिंब ने अपने आप को प्रतिबिंब आश्रित न मानकर उपाध्याश्रित मान लिया। प्रतिबिंब के आश्रित होना चाहिए था, मैं प्रतिबिंब से अभिन्न हूं ये कहना चाहिए था, उल्टा क्या कहने लगा? मैं उपाधि के आश्रित हूं, उपाधि मेरा स्वरूप है, यदि उपाधि न होता तो मैं न होता। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरा आशय को? मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊं। तुम सबसे पहली बार दर्पण के आगे, मिरर के आगे खड़े हो गए, आईने के आगे खड़े हो गए, तो सबसे पहली बार क्या हुआ आईने के अंदर? है तुम्हारा प्रतिबिंब, तुम्हारे शरीर का प्रतिबिंब। तुम्हारा तो कोई प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं है, तुम्हारा आईने में क्या प्रतिबिंब पड़ेगा? हां, तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ेगा, तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है हृदय में, और शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है आईने में। इतना समझ रहे हो ना? तुम सबसे पहले आईने के सामने खड़े हुए, तो आईने के अंदर तुमने क्या देख ली कि एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व खड़ा है। देख लिया कि नहीं? पूरा का पूरा व्यक्ति खड़ा है। अब मान लो हा, वो जो आईने के अंदर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसने ये सोचने लग गया, वो ये सोचने लग गया। मान लो तुम सोच सकते हो तो वो नहीं सोच सकता है, तुम प्रतिबिंब होकर सोच सकते हो, वो प्रतिबिंब होकर नहीं सोच सकता है। बोलो, मान लो, बस क्या अर्ज है मान लेने में? समझने के लिए तो मानना है ना। मान लो कि उसने, प्रतिबिंब ने ये निश्चय कर लिया, ये सामने जो खड़ा है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को स्वतंत्र रूप में या प्रतीत कराने के लिए खड़ा करने वाला तो ये आयना है, दर्पण है। यदि दर्पण न होता तो मैं यहां उपस्थित न हो पाता। किसने कहा? ध्यान से सुनना हो, किसने कहा? प्रतिबिंब ने ये कहा कि यदि ये दर्पण न होता तो मेरा अस्तित्व ही न होता, इसीलिए मेरा अस्तित्व ही ये दर्पण है। और बिंब को तो वो वास्ता ही करना छोड़ दिया, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? बिंब है। बिंब नहीं होता तो प्रतिबिंब क्या पड़ता है? बिंब हो तो
वो प्रतिबिंब के लिए केवल उसके अस्तित्व के लिए केवल दर्पण की आवश्यकता नहीं है, घी भी पर्याप्त है, पानी भी पर्याप्त है, तेल भी पर्याप्त है कि नहीं बोलो, अनेक विकल्प हैं प्रतिबिंब को प्रतीत होने के लिए, अस्तित्व में आने के लिए उपाधि तो अनेक हैं, लेकिन मूल बिंब तो एक ही है ना। बिंब ही नहीं रहेगा तो न पानी में प्रतिबिंब पड़ेगा, न दर्पण में पड़ेगा, न घी में, न तेल में पड़ेगा। उसको ये सोचना चाहिए, ये दर्पण फूट भी जाए तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं बिंबाश्रित हूं, मेरे स्वरूप में बिंब में कोई फर्क नहीं आएगा, ये निश्चय करना था। लेकिन मूर्खता करने के लिए तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, पड़ती है। शादी करना हो बेटी की तो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, मूर्खता करनी हो तो मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, ज्योतिष के यहां जाना पड़ता है मूर्खता करने के लिए। कहीं भी किसी भी निमित्त से मूर्खता कर सकते हो है? तो उसने क्या मूर्खता कर दी, बिंब की तरफ से तो दृष्टि हटा दिया, उपाधि जिस दर्पण में वो प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हुआ था वो उपाधि को ही अपना स्वरूप मान लिया कि यही मैं हूं, इसी के वजह से मेरा अस्तित्व है, ये यदि नष्ट हो गया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये सबसे पहले उस प्रतिबिंब ने क्या किया, खता की, गलती की। और तुम हमने भी यही किया, सबसे पहले अंतकरण में जब बिंब रूप कुटस्थ का पहली बार प्रतिबिंब पड़ा था उस समय ये गलती ना किया होता कि मेरा स्वरूप तो कुटस्थ ही है, यही दृष्टि रखकर ये जो अंतकरण में प्रतीत हो रहा है ये तो प्रातिभाषिक है, अंतकरण के चलते है, मेरा असली स्वरूप तो वही है, ये निश्चय बरकरार रखते तो पुनर्जन्म न होता, फिर संसार यात्रा न होती। लेकिन जो उपाधि है उसी को ही तुमने अपना स्वरूप मान लिया, हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब कब मानी, शुभ मुहूर्त में माना था कि अशुभ मुहूर्त में माना था, बोलो? शायद मुझे लगता अशुभ ही था वो दिन है? जिस दिन भी ये गलती कर ली है उस शुभ होता, मंगलमय होता तो जीवन विषाद से ग्रसित न होता है ना, बड़ा आनंदमय होता, विषाद से ग्रसित न होता। इसका मतलब अशुभ ही मुहूर्त था, अब वही गलती आज तक भोग रहे हैं, क्योंकि हर बार पैदा हो रहे हैं फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, उसी एक दिन की गलती से, एक बार की गलती से ये गलती पुनर्जन्म पुनर्जन्म जन्म जन्मांतर का कारण बनता जा रहा है। न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है हमको, न जाने कब तक उस गलती का परिणाम और भोगना है। अभी तक तो जो भोग चुके हैं, आज जो भोग रहे हैं भोग ही रहे हैं, और आगे भी न जाने कब तक भोगना है। अब यदि कोई पूछे कि महाराज इसके मुक्ति पाया जा सकता है, इससे अलग होया जा सकता है, बोले हुआ जा सकता है। कब कैसे, तो वेदांत ने तो एक ही उत्तर दिया कि तुम वेदांत के विचार के माध्यम से सतत अपने बिंब रूप कुटस्थ साक्षी को मेरा स्वरूप है करने का निश्चय कर लो, फिर आगे तुम्हारी ये यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी, उस गलती को फिर सुधारो। ये देख लो, उस गलती को न जाने कब तुमने की थी, वो गलती को कुटस्थ साक्षी को अपना स्वरूप न मानकर प्रतिबिंबित चेतना को तुमने अपना स्वरूप माना, वो जो गलती उसको फिर आज सुधारो, आज सुधारने का मौका है, सुधार लो, इसी जन्म में सुधार लो, अभी सुधार लो। यदि वो तुम सुधार लोगे कि मेरा असली स्वरूप तो कुटस्थ साक्षी है, फिर आगे तुम्हारी यात्रा चलेगी ही नहीं, फिर संसार तुम्हारे लिए विषाद होगा ही नहीं, और नहीं करोगे तो फिर आगे चलता ही रहेगा। एक उपाय तो ये, और तुम कहो नहीं महाराज वो तो थोड़ा कठिन है, अपने आप को कुटस्थ साक्षी निश्चय करना तो बड़ा कठिन पड़ रहा है। तो कठिन पड़ रहा है तो दूसरा सरल उपाय बता रहे हैं शंकराचार्य जी, कुछ नहीं, भगवान शिव के चरण पकड़े रखो, बस सब काम हो जाएगा। आगे वही कर लेंगे वो आगे फिर आगे वो कर लेंगे, उनका चरण पकड़ लो। तो ये श्लोक पर विचार करते हैं, ये उन तमाम शास्त्रीय पंडितों के प्रति जो केवल शास्त्र की दुहाई देते हैं और शास्त्रों की युक्ति, शास्त्रों के दुहाई, शास्त्रों का प्रमाण के द्वारा तर्क वितर्क वहा पोह करते रहते हैं, उन शास्त्रीय पंडितों के प्रति ये कटाक्ष है। शंकराचार्य ये कटाक्ष कर रहे हैं। क्या करते हैं विद्वान लोग? घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल। अब तुम लोग ने तो न्याय शास्त्र न पढ़ी हो, पढ़ा नहीं है हमारा न्याय शास्त्र। न्याय दर्शन है वैशेषिक और न्याय, नब्य न्याय, प्राचीन न्याय, वैशेषिक, कणाद का न्याय शास्त्र, गौतम का न्याय शास्त्र, कणाद ऋषि का तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र। वो लोग क्या कहते हैं? घट माने एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा। वो घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण क्या है? तुमने बड़े आराम से उत्तर दे दिया, मिट्टी है। एक घड़े की उत्पत्ति के लिए कितनी मिट्टी है? मिट्टी क्या सारा संसार की मिट्टी उस घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण है? है? संसार में जितनी मिट्टी है सब मिट्टी मिलकर एक घड़ा उत्पन्न हुआ है क्या? तब तो मिट्टी उपादान कारण है, नहीं तो उस घड़े के उत्पत्ति के लिए जितनी मिट्टी चाहिए वह मृतपिंड, मृतपिंड ही उस घड़े के उपादान का कारण है। ले जी, सारी मिट्टी नहीं, क्योंकि अलग अलग घड़े के लिए अलग अलग पिंड बनाना पड़ेगा कि नहीं है? कुमार क्या करता है? मिट्टी का किसी एक अंश लेके आता है, उसको कूट काट करके मट पानी आदि डाल के एक पिंड बनाता है, उस पिंड को चक्र में डालता है, चक्र के बाद उसको पिंड को शेप देता है, घड़े का आकार देता है। वो जो आकार लिया हुआ, जो तैयार हुआ हुआ घड़ा है, उस घड़े का उपादान क्या, कारण क्या है? मिट्टी है कि मृत पिंड है? किसी ने कहा मिट्टी है, नहीं नहीं मृत पिंड है। ले जी, प्रत्यक्ष तो यही देख रहा है ना। उपादान का मतलब क्या है? वो कारण को उपादान कारण कहते हैं जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में ही रहे, अन्यत्र न रहे, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, उपादान कारण। अब एक घड़ा उत्पन्न होना है, घड़ा कार्य है, मिट्टी को अर्थात मृत पिंड को घड़ा उत्पन्न होने से पहले भी रहना पड़ेगा कि नहीं? है? अच्छा, जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय भी रहना पड़ेगा कि नहीं? अब घड़ा बन जाने के बाद भी मृत पिंड को रहना चाहिए, लेकिन क्या घट बनने के बाद मृत पिंड रहता है? बोलो है? ये अब कुछ लोगों ने क्या कहा, घट उत्पत्ति का कारण क्या है? मृत पिंड उपादान कारण नहीं है, मृत पिंड ध्वंस घट उत्पत्ति का उपादान कारण है। ले जी, अब हो गया काम, सही क्या लग रहा है तुमको? मिट्टी उपादान कारण कहने वाला जो पक्ष है वो सही है क्या? उसका खंडन कर दिया, मिट्टी उपादान कारण है तो सभी मिट्टी चाहिए एक घड़े के लिए, क्या सभी मिट्टी मिलकर एक घड़ा बना है? नहीं। फिर उस मिट्टी के लिए, उस घड़े के लिए जितना मिट्टी चाहिए उतना मिट्टी उपादान कारण है। लेकिन केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी लाकर एक तरफ रख दो तो घड़ा बनेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मृत पिंड बनाना पड़ेगा। तब फिर क्या सिद्ध हुआ, मृत पिंड घट का उपादान कारण है। तो तीसरा व्यक्ति ने क्या कहा पता है, उपादान कारण का एक नियम होता है, उसको हम उपादान कारण मान सकते हैं, जो कार्य उत्पत्ति से पहले रहे, कार्य उत्पत्ति के क्षण में भी रहे, कार्य उत्पत्ति के बाद भी रहे, और उत्पन्न हुआ हुआ कार्य में रहे, स्वरूप से रहे। ये देख लो, तब मृत पिंड को तुमने जो उपादान कारण माना है वो गलत हो गया, क्योंकि मृत पिंड कार्य उत्पत्ति से पहले तो रहेगा, कार्य उत्पत्ति क्षण में रहेगा, लेकिन कार्य उत्पत्ति के बाद मृत पिंड ही खत्म, मृत पिंड नष्ट नहीं हुआ, और मृत पिंड कार्य उत्पत्ति के बाद उत्पन्न हुए हुए घड़े में मिट्टी का पिंड रहेगा क्या, इसलिए मृत पिंड उपादान कारण नहीं घड़े का। फिर क्या कारण है, मिट्टी तो फिर कितनी मिट्टी, सारा मिट्टी, ये प्रश्न फिर जीव करती हूं। तो तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा, मृत पिंड ध्वंस, ये देख लो ये शब्द जाल है कि नहीं बोलो, मृत पिंड का स्वरूप ध्वंस नाश होना ही घट उत्पत्ति में कारण है। बात समझ में आई कि नहीं, अब स्पष्ट हो गया। अब आम रस तुम आम से बनाते हो कि आम के ध्वंस से बनाते हो, अब समझ में आ गई है, आम रस आम रहते हुए आम रस बनेगा कि आम के ध्वंस से आम रस बनेगा बोलो, अब तो समझ में आ गई बात है। इसी तरह मिट्टी पिंडी का ध्वंस से घट बना, अब कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, मिट्टी पिंडी का ध्वंस से घट बना। तो ये सारी बात कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, क्योंकि ध्वंस किसी की उत्पत्ति का कारण नहीं बन सकता है। फिर क्या होगा कारण, बोले परमाणु, पार्थिव परमाणु ही घट उत्पत्ति में कारण है, ये मान लेना चाहिए। ये सारा विवाद यहां है, दुनिया यही विवाद में पड़े रहते हैं। विद्वान लोग क्या करते हैं है? ऐसे ही उहा पोह शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग न्याय पढ़ते थे ना, कुछ न्यायिक लोग हाँ कहीं गए, तर्कशास्त्री लोग, एक भाषा शास्त्री, दूसरा तर्कशास्त्री, और तीसरा ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिषी, ये सब थे। कहीं गए, भूख लगी, भूख लगी तो अब खाना तो पड़ेगा ना, तो किसी गांव में पहुंचे, भाई हमको भूख लग रही है खाना दो, हम बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो गांव में किसी ने कह दिया कि भाई हम आपको राशन देते हैं, पकाओ खाओ, ले जाओ राशन। बेचारे राशन लेके चले गए, तो अग्नि खोजने के लिए जंगल में गए, तो वो जो एक वैद्य था, कविराज भी था वहां, एक वैद्य था, जंगल में लकड़ी खोजने गया। जो लकड़ी खोज रहा है वो कहता है ये कौन सी जात की लकड़ी है, ये कौन से पेड़ का है, इस लकड़ी का किस रोग में निदान होगा, कौन से औषधि बन सकता है, किस रोग के लिए काम आएगा, क्योंकि वो तो वनस्पति विज्ञान जानता था, लकड़ी लेने से पहले हजार बार सोचता था नहीं नहीं ये तो मधुमेह के लिए काम आएगा, इसको जलाना नहीं चाहिए, छोड़ देता था। फिर दूसरा कहेगा ये लकड़ी, ये लकड़ी किस जाति का है, फलाने जाति का है, हाँ ये किस में काम आता है, कौन से वनस्पति रसायन गुण है इसमें, क्योंकि वही जीवन भर वही स्टडी किया हुआ था। अरे ये तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा काम आने वाला, इसको जलाना ठीक नहीं है, उसको छोड़ दिया। ले जी करते करते जंगल में घंटों हो गया, लकड़ी खोज ही नहीं पा रहा है वो, समझे कि नहीं। अब उधर वो एक व्यक्ति पाक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति चावल लेकर बैठा है, अब आएगा लकड़ी लेकर, अब आएगा लकड़ी लेकर, पकाएंगे खाएंगे, वो आए आने का नाम नहीं लेता। उधर दूसरा जो था तर्कशास्त्री, उसको बाजार में नून तेल खरीदने के लिए भेजा था, किसी दुकान में गया नमक दे दो, नमक दे दिया, तो बोले तेल दे दो, बोले तेल दे दो, बर्तन लाए हो, बोले हां एक शीशी लाया है, कटोरी लाया है, उसने तेल दे दी, उसमें तेल लेकर आया, देखने के बाद तेल क्या घी समझ लो ना, उस जमाने में तेल कहां मिलता था, घी ही मिलता था, तो आजकल तो तेल भी शुद्ध नहीं मिलता है, उस समय तो प्योर घी मिलता था, घी लेकर आया कटोरी में, आते आते वो तो तर्कशास्त्री था, उसने तर्क करने लगा, ये घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम, ये घी का आधार कटोरी है कि कटोरी का आधार घी है, उसके दिमाग में तर्क आ गया। उसके दिमाग में क्या आ गया, घी कटोरी में टिका हुआ है कि कटोरी घी में टिका है, घृताधारे पात्रम वा पात्राधारे घृतम, अरे तुम्हारे हाथ में घी भी है कटोरी है, प्रयोग कर लो ना, किसके आधार में कौन चीज है, बोले देखते प्रयोग करते, तो उल्टा लिया उसने जब उल्टा दिया तो सारा घी खत्म, लेकिन उसको घी माने नष्ट होने का दुख नहीं हुआ, बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया, खुश होता हुआ आया, देख लो आज एक समाधान मिल गया हमको। कभी कभी मोहनीश प्रश्न करता है, उसका सही समाधान मिलता है तो इतना खुश होता है, वो बहुत खुश होता है, महाराज वाह क्या आज संतोष हो गया मुझे, कई दिन से ये प्रश्न मुझे हैरान कर रहा था, आपकी कृपा से आज ये प्रश्न का उत्तर मिल गया, बड़ा प्रसन्न होता है। उसको समय इतना नष्ट हो गया उसका दुख नहीं होता है दिमाग इतना खाली हो गया उसका भी उसको दुख नहीं है, उत्तर मिल गया वो प्रसन्न। इसी तरह वो नैयायिक को घी खत्म हो गया उसका दुख नहीं है, क्या हुआ, बड़ा खुश नाचते हुए आया, अरे क्यों प्रसन्न, घी कहां गया, बोले अरे घी के बात छोड़ो पूछो नहीं, आज तो ऐसा मुझे समाधान मिला, उत्तर मिला, मतलब क्या हुआ, घी लेकर आ रहा था, हमारे दिमाग में तर्क आ गए कि घी के आधार में कटोरी टिका है कि कटोरी के आधार में घी, घृताधारे पात्रम वा पात्राधारे घृतम, दिमाग में वो प्रश्न ने परेशान कर लिया, हमने कहा प्रयोग कर लो, तो मैंने ऐसा किया तो पता चल गया कि क्या हुआ, पात्राधारे घृतम, घी पात्र में टिका हुआ था, यह समाधान हमको मिल गया। अब विकल्प नहीं आएगा कि घी कटोरी में है कि कटोरी घी में है, समाधान हो गया घी कटोरी में है, हाँ फिर घी कहां है, बोले घी जाने दो ना, हमको समाधान मिल गया वो खुशी है भाई, समझे कि नहीं, ये शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ना घी आया ना लकड़ी आया, बोलो लकड़ी भी ला नहीं पाया, सब वनस्पति है, और उसको जलाकर नष्ट तो नहीं करना चाहिए ना भाई, है रामदेव जी के बाल क्या बाल बाल कृष्ण जी की जैसे वही होंगे बेचारे, गए होंगे लकड़ी लेने, सभी रसायन वनस्पतिज्ञ है ना, वो तो बड़े भारी वनस्पतिज्ञ है, कुछ लकड़ी ला ही नहीं पाया, वो खाली रो रहा, वो घी लेने गया था वो भी नहीं ला पाया, लकड़ी क्यों नहीं लाए, बोले अरे पूछो नहीं, ये जंगल तो बहुत बढ़िया है, यहां एक फैक्ट्री खोलना चाहिए आयुर्वेद का, यहां तो जो भी लकड़ी मिल रहा है घास मिल रहा है सब रसायन है, सब आयुर्वेदिक औषधि मूलक है, क्या मैं अब ऐसे बेशकीमती रसायन को जड़ी बूटियों को आग लगाकर राख बनाए, ना वो लकड़ी ला पाए ना वो घी ला पाए, समझे कि नहीं, यही तो होता है ना, दार्शनिक लोग सब इसी में समय बर्बाद कर देते हैं, बस उपलब्धि कुछ नहीं, अब भूख लगाया और क्या करोगे, तब वेदांती था उसने कहा, अरे भाई भूख कहां लगी है। वेदांती था ना, वो अपना प्रयोग करने लग गया। उसने कहा भूख शरीर को लगती है कि भूख मन को लगता है, कि भूख इंद्रियों को लगता है, कि भूख प्राण को लगता है, कि हाँ। बहुत विचार किया, करते करते अंत में उसने निश्चय कर दिया, अरे तुम लोग चिंता नहीं करो, भूख तो प्राण को लगती है, तुम प्राण है ही नहीं हो, खाना किस काम का, चिंता नहीं करो, उसको लगती हो तो लगने दो प्राण को, तुम असंग हो जाओ ना। उसने भी समस्या वहां भी उसने समाधान दे दी, ले जी हे भगवान बड़ा विचित्र अवस्था है। तीसरा ज्योतिष था तो उसने कहा चिंता न करो, इस समय हमारे लिए मुहूर्त प्रतिकूल है। जब सब मुहूर्त अनुकूल होगा, योग नहीं है भात खाने का, भोजन करने का, जिस दिन मैं देख रहा हूं पंचांग देख रहा हूं, देखो ये ग्रह इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए घी गिर गया, ये ग्रह इसमें आने के कारण इसीलिए इस ग्रह के चलते लकड़ी नहीं मिल रही है, हैं? चिंता नहीं करो, ये ग्रह इसमें आएगा तो घी भी मिल जाएगा, ये ग्रह इसमें आएगा तो लकड़ी भी मिल जाएगा। अरे कब आएगा, कब आएगा वो, ले जी। उसने भी अपना समाधान दे दिया, बैठो भूखे, क्या उड़ा दिया है, समझे कि नहीं। शंकराचार्य जी यही कटाक्ष कर रहे हैं, घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल। नैयायिक लोग और कहते हैं अग्नि चाहिए था, अग्नि चाहिए था तो आग लेने के लिए गया था, एक और कोई आग कहां मिलेगा, तो विचार करने लगा, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नी, साहचर्य नियमो व्याप्ति, जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होता है, हैं? साहचर्य नियम है, ये व्याप्ति है, कहां धुआं है, कहां धुआं है, चारों तरफ धुआं देखते, धुआं को खोजता हुआ चलने लगा। उसके पड़ोस में एक घर था, वहां भोजन पक रहा था, वहां नहीं जा रहा है अग्नि मांगने के लिए, हैं? वो तो धुआं खोजता हुआ घूम रहा है। अंत में दिखाई पड़ा एक पहाड़ के चोटी में कोई किसान, है कोई पशु चराने वाला, कोई किसान होगा चरवाहा, वहां चराते हुए पहुंचा तो उसने अपने भोजन पकाने के लिए आग जलाई होगी, वहां धुआं दिखाई पड़ा उसको, हाँ तो व्याप्ति स्मृति हो गई उसको, वो देखो वहां धुआं है, इसका मतलब अग्नि जरूर है, पर्वतो वन्यमान धूमत्वात्, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्नी, साहचर्य नियमो व्याप्ति यथा महानसम। क्या उसने प्रयोग कर दी, तो अब वो पहाड़ चढ़ाई करने लगा, किसके लिए, अग्नि के लिए, अब कब लाएगा, कब भात पकेगा, उसने घी गिरा दी, उसने लकड़ी नहीं लाई, है वो ज्योतिष पंचांग खोलकर बैठा है, मुहूर्त नहीं आ रहा है उसके सामने, वो अग्नि लेने गया तो पहाड़ की चोटी में गया, 5 घंटा चढ़ाई कर रहा है, क्यों, बोले अग्नि वहां है, कैसे कहा, बोले धुआं निकला, अरे मूर्ख क्या मजाक है भाई, हे भगवान। घटो वा मृत पिंडो प्यणुरपि च धूमो अग्निरचल, पटो वा तंतुर्वा, देखो वेदांति क्या कहते हैं, तंतु परस्पर, तंतु संयोग पटा, ये पट क्या है, वस्त्र क्या है, तंतु संयोग वस्त्र है, समझे कि नहीं, तंतु परस्पर संयुक्त तो होंगे तो वस्त्र तैयार होगा, तो ये वस्त्र का उपादान कारण क्या है, नहीं तंतु संयोग, कपास भी नहीं तंतु भी नहीं, तंतु संयोग, हाँ? परस्पर तंतु एक आपस में संयुक्त होते जाएंगे तब जाकर कपड़ा बनेगा, तंतु उपादान कारण नहीं, यदि तंतु उपादान कारण होता तो घर में जो धागा है वहीं कपड़ा बन जाता है, लेकिन धागा तो है लेकिन धागा का परस्पर संयोग नहीं हो रहा है, वैष्णव और शैव नहीं हुए धागा। मैं हमेशा बताया करता हूं ना, तो कुछ संप्रदाय में सांप्रदायिक चिन्ह होता है ना, तिलक है, आप लोगों ने देखा है ना, कुछ रामानुजी हैं बड़े तिलक उर्ध्वपूर्ण लगाते हैं, उर्ध्व और यहां से लेकर, और निम्बार की तो यहीं से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं निम्बार की, करते हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं, निम्बार के लोग तिलक कहां से शुरू करते हैं, यहां से, हाँ नासिका से, और रामानुजी लोग यहां से त्रिशूल बनाते हैं, और सन्यासी लोग ऐसा, देखा है ना, उर्ध्वपुंड तिरछापुंड, तो ऐसा लगाया होगा तो क्या पता चलेगा, ये जरूर शैवपंथी है, ऐसा लगा होगा तो क्या निश्चय होगा, ये कोई राम भक्त या विष्णु भक्त है, वैष्णव है नहीं? अब वैष्णव शैव शैव वैष्णव की झगड़ा चलती है, हम तो वैष्णव हैं भाई, हम तो शैव हैं, तो हम कभी कभी मजाक में कहा करते हैं, ये झगड़ा मत करो भाई, तुम जो हम जो है ना, दिन भर तो शैव होते हैं, रात को वैष्णव होते हैं, पता है कि नहीं, कैसे ऐसे सोएंगे तो क्या होगा, बोलो हमारे तिलक कैसे हो जाएगी ऐसे सोएंगे तो, वैष्णव का तिलक होगा कि नहीं, खड़े होंगे कि नहीं, करवट से ऐसे सोएंगे तो हम वैष्णव होंगे कि नहीं, रात को ना? दिन में हम शैव हैं, रात को हम वैष्णव हैं, आप विचार करो, वैष्णव लोग रात को सोएंगे तो क्या होंगे, शैव होंगे नहीं, रात को सोएंगे तो उनका तिरछा होगा कि नहीं, तिलक दिन में खड़ा होगा, रात में सोएंगे तो तिरछा हो जाएगा, और हमारा दिन भर तिरछा रहेगा, रात को सोते ही खड़ा हो जाएगा, तो कौन वैष्णव कौन शैव, ये तिलक को खड़ा और तिरछे को लेकर क्यों विवाद करते हो, अरे भाई खड़ा और तिरछे के बिना तो तुम नंगे हो जाओगे, तुम्हारे जो कपड़े पहन रखे हो वो क्या है, तंतु संयोग है, तंतु संयोग कैसे हुआ है, एक धागा खड़ा है, दूसरा धागा तिरछा है, दूसरा खड़ा है, फिर तिरछा है, फिर खड़ा है, धागों के खड़े और तिरछे के अलावा और कुछ है इसमें है? बोलो, ये कपड़े में कुछ धागे तिरछे और कुछ धागे खड़े, खड़े और तिरछे सभी धागे को एक ही तरफ यदि रखा जाए तो कपड़ा बनेगा है? खड़ा जितने हैं उतने तिरछा भी होना पड़ेगा कि नहीं, आधा वैष्णव आधा शैव, ले जी ये कपड़ा वैष्णव है कि शैव है? है ये कपड़ा शैव है कि वैष्णव है, बोलो, दोनों है और क्या, अब शैव है करके इसका त्याग करना वैष्णवों के द्वारा होगा, और वैष्णव है करके इसका त्याग करना शैवों से होगा, जैसे शैव और वैष्णव मिलकर एक कपड़ा बना तो दोनों को दो कपड़ा स्वीकार करना है, तो शैव को भी वैष्णव स्वीकार करना है, वैष्णव को भी शैव स्वीकार करना है, ये तिलक खड़े और तिरछे की तिलक की झगड़ा क्यों करते हो, ये खड़े और तिरछे की झगड़े में मत पड़ो, तो तंतु हो वा तंतु संयोग हो वा, कपड़े के प्रति कारण क्या है, तंतु है कि तंतु संयोग है, एक ने कहा मृतपिंड ध्वंस ही घटकार्य की उत्पत्ति के कारण है, दूसरे ने कहा तंतु संयोग ही पट उत्पत्ति में कारण है, ये कहता है कि वियोग कारण है, दूसरा कहता है संयोग कारण है, ले जी ये सब क्या है बेचारा, ये सब बुद्धि का विलास, शंकराचार्य क्या प्रहार कर रहे हैं इन लोगों के, खुद भी इससे अलग नहीं है वो, घटो वा मृतपिंडो प्यणुरपि च धूमोग्निरचल पटो वा तंतुर्वा परिहरति किम घोर समनम वृथा कंठ क्षोभम, अरे तंतु संयोग को कारण मानने वाले, घृताधारे पात्रम पात्राधारे घृतम कहने वाले, क्या तुम्हारा ये तर्क वितर्क ऊहा पोह जिस समय में घोरम वो यमराज उपस्थित होगा तो उस समय क्या तुम्हारा तंतु और तंतु संयोग ये निश्चय क्या यमराज से बचा पाएगा? बोलो, बचा पाएगा? जिस समय मृत्यु सामने आएगा, वह घड़े का उपादान कारण मिट्टी या मिट्टी का पिंड या पिंड ध्वंस, ये बुद्धि क्या उस समय यमराज से तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, परिहरति किम घोर समनम, घोरम माने संसार, घोर माने मृत्यु, हाँ? क्या उससे तुमको बचा पाएंगे ये सब? जब ये तर्क वितर्क वह पोह तुम्हें मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, तो वृथा कंठ क्षोभम, तो फिर बिना मतलब का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर शास्त्रार्थ करके समय व्यतीत समय बर्बाद क्यों करते हो, हैं? बोलो, हैं? तो हमने पहले भी कहा है, पढ़ते थे ना हम लोग, तो कोई कहे पढ़ना चाहिए, हाँ बहुत मेहनत करके पढ़ा करो, कहता है ना, तो हम कहते पठितव्यम तो मर्तव्यम, न पठितव्यम तो मर्तव्यम, फिर रटा रटम किम कर्तव्यम, पढ़ो तो भी मरना है, न पढ़ो तो भी मरना है, फिर ये आई उन रे लिक, आई उन रे लिक, अभी क्या करना है, ये सब करके क्या करना है, हैं? देख लो, तो इसी तरह शंकराचार्य जी ने एक जगह भी कहा है ना, नहीं नहीं रक्षते डुक्रे करणे भज गोविंदम, ये उसी से संबंधित है। ये वृथा कंठ क्षोभम वहसी तरसा तर्क वचसा, बिना मतलब तर्क कुतर्क वितर्क करके वहा पुह करके, एक तो अपने प्रत्यक्ष कंठ को भी तुम दुखा लो सुखा लो, कंठ सुखा सुखा कर तुम ये सिद्ध करने, अपना सिद्धांत सिद्ध करने की कोशिश करोगे, तो तुम जो सिद्धांत सिद्ध करोगे और शास्त्रार्थ में तुम विजय होगे, तो वह विजय मृत्यु पर विजय कर पाएगा कि नहीं, या? बोलो, शास्त्रार्थ में तुम्हें जो विजय मिलेगा वो विजय क्या मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराएगा? तो फिर क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। तो किसी ने पूछा कि फिर मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने का उपाय क्या है, मृत्यु पर विजय पाने के उपाय क्या है महाराज? शंकराचार्य जी ने कहा, पदाम्भोजम शंभो, एक उपाय है भाई, क्योंकि उसका नाम है मृत्युंजय, शिव का नाम शास्त्रार्थ विजय नहीं है, शिव का नाम क्या है? मृत्युंजय, घटो वा तंतुर वा इत्यादि शास्त्रार्थ करके शास्त्रार्थ विजय किया शिव ने, ऐसा कहीं नहीं है, तो भगवान शिव के पादाम्भोज, अम्भ माने जल, अम्भोज माने कमल, पाद एव अम्भोज पादाम्भोज यानी चरण कमल, भगवान शिव के जो चरण कमल हैं, भज उसी की तुम सेवा करो, यदि मृत्यु पर भी विजय पाना चाहते हो तो रटा रट खटा खट छोड़ो, उसके चरण पकड़ो, उसकी सेवा करो, भज सेवायाम सेवा करो, संवर भजा परम सौख्यम ब्रज सुधी, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत अच्छी है विद्वानों, लेकिन ये बुद्धि अच्छी होने पर भी कुपात्र में जाता है ना, तो अच्छी भी बुरी हो जाती है, हैं? छाछ बहुत अच्छी चीज है ना गुजरातियों के लिए, तो बहुत ही अच्छी है, छाछ बहुत अच्छी चीज है, शास्त्रकारों ने तो यहां तक कह दिया है, तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, ये जो छाछ है स्वर्ग में इंद्र को कभी नहीं मिलता है, हैं? छाछ पीने के लिए तो गुजरात में आना पड़ेगा उसको, खाना खाने के बाद एक गिलास छाछ पी लो, थोड़ा सा नमक और जीरा डालकर सारा भोजन उपशम, खाया हुआ सब पच गए, समझे कि नहीं? हूं हमजे ये देख लो सुधी, लेकिन वही छाछ इतना अमृत तुल्य छाछ यदि किसी पित्तल के बर्तन में रखोगे तो क्या होगा, जहर बन जाएगा कि नहीं, मृत्यु का कारण बन जाएगा है। तो अच्छी वस्तु भी कुपात्र में होने पर घातक होता है। तुम्हारी बुद्धि तो अच्छी है लेकिन अभी तक कुपात्र में ही उसका प्रयोग हो रहा है। अरे जड़ मति, जड़ वस्तु के बारे में विचार कर रहे हो, चेतन के बारे में विचार करो ना भाई। घट बना है, पिंड मृत पिंड से बना है कि मिट्टी से बना है, कि मिट परमाणु से बना है, कि पिंड ध्वंस से बना है, कि कपड़ा बनाया है तो कापूस से बनाया है, कि तंतु संयोग से धागा बनाया है, कि धागा संयोग से कपड़ा बनाया है, कि क्या करोगे इन सब से। मृत्यु से बचाने वाला एक ही उपाय है, शंभोर पदाम्भोजम। पदाम्भोजम शंभोर भज परम सौख्यम ब्रज सुखी। बस एक ही भगवान के चरण में उनकी सेवा करो, तुम बड़े आनंद में रहोगे, बड़े सुखी होगे, और ये घोर समनम परिहरति। और भगवान शिव में ही वो क्षमता है कि घोर समन का भी वो परिहार कर देते, यानी मृत्यु को भी उन्होंने जीता है। इसलिए तुम्हारे सामने मृत्यु उपस्थित हो और तुमने यदि शिव के चरण को पकड़ रखी हो तो मृत्यु अपने आप ही डर के मारे भाग जाएगा। मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुना है कि नहीं? मार्कंडेय ऋषि, उनकी आयु नहीं थी, बच्चे में खेलने लगे, प्रारब्ध समाप्त तो हो रहा था, विषयों में खेलते खेलते मस्त थे। नारद जी घूमते हुए गए, ए बेटा क्या कर रहे हो? बोले खेल रहे। अरे भगवान का भजन करो। बोले महाराज नारद जी अभी तो खाने पीने मौज कर रहे, खेलने का समय है, जब बूढ़े होंगे तब भगवान का भजन करेंगे। नारद जी ने कहा कि तू बूढ़ा कभी नहीं होगा, तब तो बहुत अच्छा है महाराज। बोले अच्छा नहीं, अभी मरने वाला है, जिंदा रहेगा तब ना बूढ़ा होगा, तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, मतलब अच्छा है तो अच्छा नहीं है, मरने वाला है, हैं? कब? बोले दो मुहूर्त का समय है, तेरे प्रारब्ध को मैं देख चुका हूं, दो मुहूर्त के बाद तेरी मृत्यु निश्चित है। बस अब क्या खेलेगा, क्या यमराज आएगा ले जाएगा तेरे को, तो वो तो डर गया, मेरी मृत्यु दो मिनट के दो मुहूर्त के बाद है, ओहो तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे कौन बचाएगा, कोई है रक्षा करने वाला? नारद जी ने कहा कि हां संसार में और कोई उपाय नहीं है, मेरी मां नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा नहीं, फिर कौन रक्षा करेगा? न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति कोऽपि न कालवशं गतम् भजतरे मनुजा गिरिजा पतिम्। न जनक, तेरा बाप तो तुझे पैदा तो कर दिया, तेरे को भूख लगी हो तो अन्न खाने देगा है, लेकिन जिस समय यमराज सामने आएगा तेरे बाप उस यमराज के पकड़ से बचाने में असमर्थ है। मां 10 महीने पेट में रखा, बड़ा किया, दूध पिलाया, मल मूत्र की सेवा की, अभी भी भूख लगी हो तो दूध पिला सकती है, लेकिन जिस समय मृत्यु सामने आएगा तेरी मां भी रक्षा नहीं कर पाएगी। तेरा भाई सहोदर, अन्यत्र यदि कोई दुश्मन सामने आए तो उसको मार भगाने में वो मदद कर सकता है, लेकिन तूने ज्यादा संपत्ति कमाई तो उसके भाग हिस्से में मदद कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तुमने ज्यादा कमा ली, अपने नाम पर रखा तो टैक्स पड़ेगा ना, तो क्या करूं, धीरे ज्यादा संपत्ति हो गया, टैक्स पड़ेगा, क्या करूं भैया? बोले आधा मुझे दे दे, टैक्स भी बच जाएगा। मदद कर सकता है कि नहीं बोलो, तैयार हो गए कि नहीं बोलो? तुम्हारा भाई यदि तुम्हारे सामने प्रस्ताव लाएगा तो तुम तैयार हो गए कि नहीं बोलो? भाई की मुसीबत को हेल्प करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं? हो जाएगा, मैं भी हो जाऊंगा वो। हाँ, तुम्हारे पास कोई समस्या हो तो तुम्हारे हेल्प करने के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगा। हाँ, पैसा ज्यादा है, टैक्स की कोई समस्या है तो लाओ, ट्रस्ट ट्रस्ट को दे दो, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है, वृद्धाश्रम चल रहा है, ट्रस्ट को दे दो, आयकर से छूट है ट्रस्ट, तुमको कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, देख लो हेल्प हुआ कि नहीं। तुम्हारा भाई भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु सामने आएगा तो क्या करोगे? कर पाएगा? वो कहेगा बारह, हाँ इससे तो हम मदद नहीं कर सकते तुमको बचाने के लिए, तुमको तो मरना ही पड़ेगा, तुमको ही मरना पड़ेगा। बोले मैं नहीं मारूंगा, किसी और को भेजू? बोले ये नहीं चलेगा वहां, तुमको ही मरना पड़ेगा, तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आहा, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरी बलम कुलम। बादाम खा खा के दंडवत रामदेव की तरह करके शरीर को ताकतवर बनाया, एकदम मजबूत बनाया, स्टील बॉडी बनाया, तो ये यमराज आए तो एक मुक्का मारो, तुम्हारी ताकत यमराज के सामने काम नहीं है। उसका एक वज्र पड़ेगा तुम्हारे उसमें तो खत्म। न च भूरी बलम कुलम आवाति कोपि न काल गतम बसम बसम गतम। फिर क्या करे महाराज? कोई रक्षा करने वाला दुनिया में नहीं है, भले एक ही है। भजत रे मनुजा गिरिजा पति। हाँ, वो गिरिजा, गिरी पर्वत, तस्मात जाता गिरिजा पार्वती, पर्वतस्य अपत्यम पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती, गिरी पर्वत उसकी पुत्री पार्वती, गिरिजा पतिम भजा। किसी क्रिश्चियन ने सुन लिया, देखो हिंदुओं लोग भी गिरिजा का भजन करो, कहते हैं तुम लोग भी चलो गिरिजाघर। रामायण में एक चौपाई लिख दिया तुलसीदास जी ने, पार्वती के ब्याह शादी से पहले, सीता के ब्याह से पहले, शादी से पहले वह गिरिजा पूजन गई, ऐसा शब्द आ गया। शादी से पहले वह गिरिजा पूज माने भगवान शिव के पूजा में गई होगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा, देखो ये तुलसीदास जी ने भी कहा गिरिजा पूजन, चलो गिरिजा घर। ये सीता भी पार्वती सब ने गिरिजा का, गिरिजा घर का पूजा की है, तुम लोग भी चलो। बेचारे जो अनपढ़ है, तुम लोग तो नहीं जाओगे, बेचारे गांव के जो अनपढ़ है वो तो मान जाएंगे, हाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकराचार्य जी ने लिख दिया है, क्या भ्रम फैला रखे हैं संप्रदाय बढ़ाने के लिए। कुछ नहीं, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। इसी तरह यह शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वृथा कंठ क्षोभम बहसी तरसा तर्क वचसा पदाम्बोजम संभोर भज परम सौख्यम रज सुधी। हे विद्वान हो, उस परमात्मा के चरण की सेवा करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, वह घोर समन भी करेगा और तुमको आनंद भी देगा, क्योंकि वह संभू है। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, मनस्ते पादाब्जे निवसतु वच स्तोत्र फणितौ करौ चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथा कर्णन विधौ तव ध्याने शंभुर नयन युगलं मूर्ति विभवे परग्रंथान केर्वा परम शिव जाने परमत। मनस्ते पादाब्जे, किसी ने कहा शिव भक्त से, वो तो भगवान शिव की सेवा में लगा हुआ था, अरे क्या कर रहा है? बोले हम तो सेवा में लगे मारे। अरे सेवा करेगा क्या करेगा, चल मैं तेरे को न्याय शास्त्र पढ़ाऊंगा, तर्क शास्त्र पढ़ाऊंगा, बड़ा भारी विद्वान बनाऊंगा। तो उसने उत्तर दिया, अरे पढ़ने के लिए तुम कहोगे मन लगाकर पढ़, कहोगे ना, जब पढ़ने लगूंगा उस समय तुम जरूर कहोगे कि मन लगा कर पढ़। अब क्योंकि मैंने मन तो भगवान शिव के ध्यान में लगा दी, तो मन एक ही है मेरे पास, वो मन शिव के ध्यान में लगा दी। अब तुम्हारे शास्त्र पढ़ने के लिए मन नहीं होगा तो तुम थप्पड़ मारोगे, हमको नहीं पढ़ना है। ले जी, शिव के ध्यान से हटाकर मन तुम्हारे तर्क शास्त्र पढ़ाने में नहीं लगाना है। हा मनस्ते पादाब जी, हे शिवा, ये मेरा मन आपके चरण कमल में हमेशा लगा रहे। निवसतु बचस्तोत्रे फणितौ, और तुम कहोगे व्याकरण पढ़ने के लिए चलो, तो व्याकरण पढ़ने के लिए तुम कहोगे कि पाणिनीय सूत्र को रटो, रटने के लिए ऐ उण रि लृक् ऐ औच है वरट लण यम गण नम बोलना पड़ेगा। वाणी तो मैंने शिव जी की स्तुति में लगा दी है, एक ही तो वाणी है मेरे पास। अब तुम्हारे पाणिनीय सूत्र पढ़ने के लिए वाणी को लाना पड़ेगा, वो वाणी तो भगवान शिव की स्तुति गान में लगा दी। और जब मैं नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे पाणिनीय सूत्र, दो चार थप्पड़ मारोगे तुम, फिर किस मुख से मैं तुम्हारे पाणिनीय सूत्र रटूंगा, भगवान शिव की स्तुति गाऊंगा कि तुम्हारे पाणिनीय सूत्र रटूंगा, बोलो। दोनों एक ही साथ तो होगा नहीं, मुख को उधर लगा दिया, मन को उधर लगा दिया, अब क्या पढ़ूंगा मैं। मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचस्तोत्र फणितौ करौ चाभ्यर्चायाम। अब तुम कहोगे किताब लेकर आओ, अब हाथ तो भगवान शिव के अर्चना में लगी हुई है, हाथ खाली हो तब किताब लाए। तुम कहोगे कि लिखो, हा इको यणची इक स्थाने यण सात संहितायाम विषय अच परे रहते है? तुम प्रयोग करने लगाओगे, लिखना हो लिखो बोलोगे, और हाथ तो भगवान शिव के अर्चना में लगी हुई है, दूसरा हाथ तो है ही नहीं, तब वहां से हटाकर लाना पड़ेगा तू लिखने के लिए। मैंने वो वहां लगा दी है तो अब मैं क्या लिखूंगा और क्या पढ़ूंगा, बोलो। श्रुतिरपि कथा कर्णन विदौ, तुम कहोगे कि सुन, मैं पढ़ा रहा हूं सुन। अब तुम्हारे व्याकरण के परिभाषा पढ़ सुनूंगा कि भगवान शिव की कथा सुनूंगा, बोलो। कान को तो कथा सुनने में लगा दिया है और तुम्हारी क्या सुनूंगा मैं, बोलो। तब ध्याने बुद्धिर, अब जो बुद्धि है वो भी भगवान शिव के ध्यान में लगा दी है। नयन युगलम मूर्ति विभवे, अब तुम कहोगे किताब ठीक से पढ़, पुस्तक ठीक से पढ़, देखकर पढ़, कहोगे कि नहीं है, देखकर पढ़ कहोगे, और आंख तो शिव ध्यान में लगा दिया है और कहां से मैं अक्षर पढ़ूंगा मैं। इसलिए पढ़ने लिखने का काम छोड़ दो महाराज, तुम ही लोग जो करना हो कर लो, हमको मत कहो। तो क्या कहेगा, परेर परग्रंथान कैरवा, संसार में अनेक शास्त्र है, अनेक शास्त्रम बहुलाच विद्या। देख लो आयु अल्प है, विघ्न बहुत है, शास्त्र ज्यादा है, विद्या बहुत है, आयु अल्प है, विघ्न बहुत है, क्या करो। तो नीतिकार ने कहा यत्सार भूतम तदुपासनीयम, उस अल्प आयु में बहुत विघ्नों के बीच में रहते हुए तुम्हें क्या करना है, तो बोले यत्सार भूतम, सारे शास्त्र में पढ़कर विद्वान होऊंगा। यदि तुम कहोगे तो शास्त्र पढ़कर जो विद्वान होगे उनके तो हाल बता दिया पहले श्लोक में वो क्या तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे ग्रंथ, तो क्या करोगे, अहंकार ही बढ़ेगा, मैंने ये पढ़ा मैंने ये पढ़ा, मैं ये सब विद्वान उसको जानता हूं। यह सार भूतम, सारे शास्त्र का जो सार है, तद उपासनीयम, हमने तो इतना निश्चय कर लिया है, सारे वेद वेदांग सारे शास्त्रों का एक ही सार है, भगवान शिव, बस परमात्मा। सबका सार क्या है बोलो, परमात्मा। परेर ग्रंथान केरवा परम शिव जाने परमत। और सब ग्रंथों को शास्त्रों को पढ़कर क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, मैंने तो इतना निश्चय कर लिया है कि सबका सार एक ही शिव है, शिव के अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं, ना व्याकरण जानने की जरूरत है, ना न्याय जानने की जरूरत है। परेर ग्रंथान केरवा, शास्त्र रहे पढ़े रहे, पढ़े रहने दो, ये सब कोई मतलब नहीं, प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। बस एक शिव का ध्यान करो, शिव की सेवा करो, मनस्ते पादाब जे मन से हमेशा शिव का चिंतन करो और वाणी से शिव की स्तुति गान करो, करो चाभ्यर्चायाम हाथ से भगवान शिव की ही प्रतिम को की सेवा करो, श्रुतिरपि कथा कर्ण न कान है तो उन्हीं की, क्योंकि उन्होंने दिया है ये सारे साधन, किसने दिया है, शिव ने ही दिया है। ए कोई वैष्णव हो तो ये नहीं कह देना हो कि शिव शिव कह रहा है, विष्णु नहीं कह रहा है, परमात्मा ने दिया है, समझे कि नहीं, मैं बीच बीच में परमात्मा बोल दिया करता हूं, खाली शिव शिव करेंगे तो वैष्णवों को थोड़ा बुरा लग सकता हो, परमात्मा ने दिया है। अब हो गया काम, हमने उस दिन व्याख्या कर दिया था ना परसों, तुम किसका भजन करते हो, कृष्ण का कि परमात्मा का, ये शिव का करते हो कि परमात्मा का, ये क्योंकि परमात्मा पहला है, कृष्ण शिव ये खाली नाम अलग अलग हैं। एक बार कहते हैं अयोध्या के कुछ संत लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, बड़ा प्रसिद्ध था, तो वृंदावन चले गए, वहां जाकर देखा तो राम तो है ही नहीं, द्वारिकाधीश में किसके मूर्ति है, कृष्ण की है, राम तो है ही नहीं वहां। बोले अरे ये राम तो है ही नहीं, क्या दर्शन करें, बोले यही राम है भाई, दर्शन करो। नहीं नहीं, राम के हाथ में तो धनुष बाण है, इसके हाथ में तो धनुष ही नहीं है। ले जी, ये कौन है, किसी ने कह दिया ये तो कृष्ण है। बोले हम तो राम का दर्शन करेंगे महाराज, कृष्ण का नहीं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे तू यहां क्यों आया अयोध्या से, बोले भगवान का दर्शन करने आया हूं। बोले कर लिया, बोले नहीं, क्यों, राम तो है ही नहीं तो मैं क्या करूं। कृष्ण ने कहा कि मैं ही तो हूं, बोले तुम तो कृष्ण हो, बोले मैं अयोध्या में राम होता हूं, यहां कृष्ण होता हूं। वही है, मैं वही हूं, नाम फर्क है, अयोध्या में मैं राम होता हूं, यहां कृष्ण होता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तुम ही हो, यहां कृष्ण होकर बैठे हो, बोले हां। फिर वो काशी गए तो काशी में तो न राम है न कृष्ण है भाई, क्या है, अब किसका दर्शन करें भाई, न राम का न कृष्ण का। बड़े दुखी हो गए, वापस जा रहे थे तो भगवान शिव ने कहा कि क्या क्यों आयो, बोले दर्शन करने आए थे, क्या दर्शन, बोले नहीं महाराज, क्यों, बोले न राम है न कृष्ण है तो क्या दर्शन करें, बोले मैं ही तो हूं भगवान, बोले तुम तो शिव, बोले हां हां, अयोध्या में राम, वृंदावन में कृष्ण, काशी में शिव, हे भगवान मैं हूं, खाली नाम फर्क है, मैं वही हूं, काशी में शिव, अयोध्या में राम, वृंदावन में कृष्ण। लियो जी, और द्वारिका में द्वारिकाधीश की जय। लियो जी, वही है भाई, द्वारिका में द्वारिकाधीश, और डाकवर के पास छोड़ जी, लेव जी, सब वही है भाई, कोई फर्क नहीं, भगवान परमात्मा बस एक ही है, नाम आने का। पर ग्रंथान केरवा परम शिव जाने परमत, मत एक ही, भगवान शिव को जानता हूं, उसने जो साधन दी है उसी की सेवा में लगाता हूं, क्योंकि परमात्मा शिव का दिया हुआ साधन का जीवों के सेवा में प्रयोग लगाकर उसके साधन का दुरुपयोग करना है कि नहीं, बोलो, दुरुपयोग करना है, हा? जो वस्तु जिसने दी है उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग मत करो, और शिव ने दिया है ये सारे साधन तो उसी की सेवा करने में लगाओ, उसने तुम्हें ही उसकी सेवा के लिए ये दूंगा तो ये ताकि मेरा सेवा करेगा। हाँ, बाणासुर की कहानी सुनी है कि नहीं? उसके दो हाथ थे और उसकी सेवा करने की बहुत इच्छा थी। प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिवेश्वर भगवान शिव की मिट्टी का शिवलिंग बनाता था और 16 उपचार पूजा आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 16 उपचार पूजा करता था। लेकिन दो हाथ से उसको फुर्सत काम ही पूरा न हो, मिट्टी लाओ फिर शिवलिंग बनाओ, सब अपने हाथ से करना है ना? तो हम लोग तो कभी पार्थिवेश्वर की पूजा करनी हो तो 2-4 मजदूर रख देते हैं, तो मिट्टी लाना, तो शिवलिंग बनाना, तो फूल ले आना, सब दूसरों से करा लेते हैं और कहते हैं कि हमने शिवलिंग की पूजा की। क्या किया तुमने? किया सब दूसरों से, अपने आप से करना है। तो करता था, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्या क्या चाहिए बेटा बोल। तो बाणासुर ने कहा कि महाराज आपने ये दो हाथ दी लेकिन दो हाथ से आपकी सेवा पूरी नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे 1000 हाथ दो ताकि आपकी सेवा में पूरी की पूरी सेवा कर सकूं। भगवान ने कहा कि अच्छा तू मेरी ही सेवा करना चाहता है तो मुझे क्या हर्जा है, इसलिए आपको दो हाथ दिया है शिव जी ने। वो शिव जी जानते हैं कि आपको 1000 हाथ देंगे तो संसार की सेवा करोगे है ना? शिव जी जानते हैं तुमको 1000 हाथ देंगे तो संसार का ही सेवा करोगे, भगवान की नहीं करोगे, इसलिए उन्होंने दो हाथ दिया है तुम्हें। और बाकी हाथ चाहिए तो फिर हायर करना पड़ता है तुम्हें, नहीं है? बाणासुर को 1000 हाथ दी तो बस बड़ी सेवा करने लगा। भगवान फिर प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए बेटा? बोले अभी तक तो मैं पार्थिवेश्वर की सेवा करता रहा आपके प्रतीक का, अब मेरी इच्छा है यदि आप प्रसन्न हैं तो ये 1000 हाथ से मैं प्रत्यक्ष आपकी सेवा करूं, मेरे यहां आप आकर बैठ जाइए, प्रत्यक्ष आपके 1000 हाथ से आपकी सेवा करूं। अच्छा तो कर ले भाई। भगवान शिव आ गए, शिव ने कहा कि मैं अकेले तो आऊंगा नहीं, मेरा कुटुंब परिवार है, हाँ? पार्वती भी आएगी। बोले कोई बात नहीं, पार्वती को आने दो, वो मेरी पत्नी उसकी सेवा करेगी, मैं आपकी सेवा करूंगा। बच्चे आएंगे, बोले ठीक है उनको भी आने दो, सबकी हम सेवा करेंगे, आपकी कृपा से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। शिव जी आ गए, बैठ गए, डेरा जमा के बैठ गए। अब शाम को बाणासुर उनके शरीर दबा रहा था, हाँ मालिश कर रहा था, शरीर दबा रहा था, सेवा कर रहा था। तो भगवान शिव बड़े खुश हो गए, बेटा अब क्या इच्छा है तुम्हारी बोलो। तो बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा है, मेरी हर इच्छा पूरी की है आपने, दो हाथ से, चार हाथ, चार हाथ से, 1000 हाथ, सब कुछ आप मुझे प्राप्त हो गया है महाराज, और कोई इच्छा नहीं, लेकिन एक ही इच्छा रह गई है, ये 1000 हाथ जो आपने दिया था इसमें कितनी ताकत है इसको जानने का, प्रयोग करने का कोई स्थान मुझे नहीं मिला, मैं कहां जाकर परीक्षण करूं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है, है? क्योंकि कोई भी मेरे से लड़ने आता ही नहीं है। भुजबनम, पुष्पदंताचार्य जी ने बाणासुर के हाथों की उपमा दी है, भुजबनम हाथों का जंगल, जब वो 1000 हाथ खड़ा करेगा तो जंगल होगा कि नहीं, है? रणकंडू या युद्ध करने में खुजली हो रही है महाराज, आपके ये सेवा करके मेरे हाथ का पूरा मजा नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कि इस लड़ू मैं मजा लूं, आपके जो हाथ दिया उसमें कितनी ताकत है, कोई है संसार में मेरे बराबर लड़ सके? भगवान शिव ने कहा कि बहुत हैं बेटा, चिंता न कर, बहुत हैं मुझसे लड़ सके। बोले 1 से 1 हैं, तो तुम मेरे से लड़ेगा? बोले नहीं, आपसे तो नहीं, आप तो भगवान है, क्या लड़ूंगा मैं आपसे। कहीं वो क्या कहता है पता है, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे पास ताकत ज्यादा है, आप कमजोर है, कहीं एक झटका लगा दिया तो आपकी मृत्यु हो गई तो मुझे पाप लगेगा, आपसे नहीं लड़ूंगा, बोलता है मुर्गा तो बोले है बहुदेव, कौन है, कहां रहते हैं वो? बोले ठीक है, धैर्य रख, हो जाएगा। कहां रहते हैं? बोले द्वारिका में। हैं हैं ऐसे? बोले हां। तब फिर वो कब, उनसे हम कब लड़ पाएंगे? बोले प्रतीक्षा कर, जब तेरा ये ध्वजा गिरेगा, राज सिंहासन के जो पताका ध्वजा है, जिस दिन गिरेगा तुझे उनसे लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। बस उदाहरण का प्रसंग वही तो आ गया ना, लेव जी। हाँ, तो उदाहरण का तो वही वक्खाहरण, उसमें यही जोड़ा जाता है बाणासुर के, बाणासुर की पुत्री का नाम उषा है। उसको स्वप्न हुआ, स्वप्न में एक ऐसा पुरुष आया, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, और उसके स्वप्न में स्पर्श सुख इतना दिव्य पाया उसने। जागने के बाद उसी की स्मृति हुई और उसके चित्रलेखा से उसने कहा कि सहेली, रात को स्वप्न में हमने ऐसा देखा है, कौन होगा वो, किस लोक में रहता है, कौन है? मेरी तो अब उसके अलावा अन्यत्र मन जाना ही नहीं। यदि मैं किसी को वरण करूंगी तो उसी को, लेकिन तुम पता लगाओ कि वो कहां रहता है, किसका बेटा है। चित्रलेखा ने कहा कि मेरे लिए असंभव नहीं, पता लगाती हूं। एक एक फोटो बनाते दिखाया, ये था, ये था, ये था। नहीं, इंद्र को बनाया, उपेंद्र का बनाया, नहीं है? देख लो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण का बनाया, तो यही था, वो भी तो बड़ा खटपटी था ना। हाँ, तो बोले यही था, रात को यही आया था। बोले नहीं, लेकिन कुछ चेहरा मिलता जुलता है। हाँ, देखो प्रद्युम्न का बनाया, हाँ हाँ कुछ तो मिलता है, लेकिन परफेक्ट वही नहीं है। तब अनिरुद्ध का बनाया, तो बस यही है। कहां रहता है? बोले जहां भी रहेगा तू क्यों चिंता करती है, पहचान लिया ना तूने? बोले हाँ, ये उसमें रहता है, द्वारिका में। लाओ, कैसे लाते हो? मां चित्रलेखा गई और चारपाई में सोए थे अनिरुद्ध, उठा के चारपाई सहित ले आई, क्योंकि वो योगिनी थी, योग सिद्ध था उसके यहां, लेके आ गई। ले, तो द्वारिका का अनिरुद्ध स्वर्णपुर में जाकर अवरुद्ध हो गया है ना, चित्रलेखा के घर में वो तो कैद हो गया, वो बंद कर दिया उसने, कहीं जाने ही नहीं दिया। जब पता चला द्वारिका में कि अनिरुद्ध कहां गया, तो मीडिया को बुलाया गया, नारद जी, मीडिया है ना, वो तो मीडिया को तो सब पता है। हाँ, गूगल सर्च किया वहां तुरंत, तो नारद जी ने कहा कि हाँ देखो, सोनितपुर में रहता है, बाणासुर के कन्या के यहां बंदी बना है, अब चौमासा है, युद्ध तो करना होगा, चौमासा समाप्त होने के बाद चलो युद्ध करते हैं। बस दल बल के सहित कृष्णा प्रद्युम्न सब पहुंच गए सोनितपुर, बाणासुर की राजधानी में। उसी दिन उसका छत्र गिर गया, फिर युद्ध हुआ घमासान। तब भगवान शिव ने कहा, कृष्ण को इशारा किया, ये ऐसे तुम पार नहीं पाओगे महाराज। तो शिव को कहा कि आप सो जाओ, वो तो भगवान शिव तो सो गए, खरांटा लेकर सोने लग गए। और शिव की शक्ति पाकर महासुर शक्तिशाली था, वो सो गए। कृष्ण ने एक एक हाथ काट दिया, तीर चलाते गए, बाणासुर के एक एक हाथ काटे, क्योंकि शिव भक्त थे, मारना तो ठीक नहीं था, बाणासुर शिव भक्त था, मारना तो ठीक नहीं था, हाथ काट दी। तब एक एक हाथ काटे तो केवल दो हाथ बचे थे, तो भगवान शिव जग गए, कृष्ण बंद करो, इसका पहले दो हाथ थे, अभी भी दो ही हाथ रहे, ये ज्यादा हाथ देने से इसको घमंड हुआ था, मेरा है तो मेरा भक्त, फिर भी असुर जाति का होने के कारण आसुरीपना दिखाई पड़ा। अब उसका दंड उसने पाया, अपने उसके सारे हाथ काट दिए, अब रहने दो, अब क्या करें? बोले आपका जो पोता है ले जाओ, ब्याज के सहित ले जाओ, है ना? ब्याज क्या था? उषा है ना, ब्याज के सहित ले जाओ। बाप वैष्णव और शैव शक्ति के बीच में क्या दिव्य शादी रचाया गया, और भगवान श्री कृष्ण ने बोनस के सहित अपने पोते को लेके आए, क्या आनंद हो रहा था। देखो, करौ चाभ्यर्चायाम, भगवान शिव की सेवा करो हाथ से, लेकिन बाणासुर की तरह सेवा करो, लेकिन बाणासुर की तरह घमंड मत करो। बस परग्रंथान, ये सब तर्क शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव कहते इसी से कल्याण होगा जीव का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।